चाहत आहान के घर पर उससे पैसों की बात करने के लिए आई थी। आहान के सिक्योरिटी गार्ड्स ने चाहत को अंदर जाने से रोक दिया था, क्योंकि इस वक्त आहान बहुत ज्यादा गुस्से में था। चाहत ने पहले तो कल सुबह आने का सोचा, लेकिन फिर श्रद्धा ने उसे कॉल करके बताया कि निशा की हालत और बिगड़ रही है। इस सिचुएशन में चाहत के पास पीछे हटने का ऑप्शन नहीं था। वो अंदर जाने की जिद करने लगी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने फिर भी उसे अंदर नहीं जाने दिया। तभी तनु बाहर निकल कर आई। चाहत को देखते ही उसने उसे पहचान दिया और अपने साथ अंदर ले गई। अंदर आते ही तनु ने चाहत को आहान की बीमारी के बारे में बताया। सब कुछ बताने के बाद तनु ने कहा, देखो, तुम्हें जो चाहिए मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें आहान से दिलवाऊंगी। अगर आहान तुम्हारी नीड्स पूरी नहीं कर पाया तो मैं करूंगी। तनु की बात सुनकर चाहत का ध्यान टूटा। वो आहान के बारे में सोच रही थी। अब तक की मुलाकातों में आहान का बिहेवियर उसे काफी नॉर्मल लगा था, सिवाय पहली बार के, जब उसने उस पर ड्रिंक गिराई थी। तब वो चाहत पर थोड़ा गुस्सा हो गया था। चाहत ने जवाब में कहा, 1 करोड़ रुपए? मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। क्या आप मुझे पैसे दे पाएंगी, और वो भी कल सुबह तक? चाहत की डिमांड सुनकर तनु को झटका सा लगा। उसने तुरंत खुद को नॉर्मल करके कहा, आर यू सीरियस? तुम्हें 1 करोड़ रुपए चाहिए, वो भी 1 रात के लिए आहान का गुस्सा शांत करने के लिए? मैं यहाँ उनका गुस्सा शांत करने नहीं आई हूँ, और ना ही मुझे इस तरह की किसी बीमारी का पता है। उन्होंने मुझे कहा था कि वो मेरी हेल्प करेंगे। वो मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैं बस हेल्प मांगने के लिए आई हूँ। मुझे उनसे बात करनी है और आप मुझे रोक नहीं सकती, चाहत ने सख्त शब्दों में कहा। वो तनु को साइड करके इधर उधर आहान को देखते हुए जाने लगी। तभी तनु ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। पागल तो नहीं हो गई हो? ऐसी सिचुएशन में आहान के पास गई तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, तनु ने उसे रोकते हुए कहा। वो चाहत को अपनी तरफ से आहान के पास भेजती तो सब कुछ समझा कर भेजने वाली थी कि कैसे आहान का गुस्सा शांत किया जा सकता है। चाहत ने तनु का हाथ झटकते हुए कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना, मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैं उनकी पाई पाई चुका दूंगी, लेकिन अगर कल सुबह तक मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं अपनी मॉम को खो दूंगी। बोलते हुए चाहत की आंखों से आंसू बहने लगे। अब तक वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी माँ का नाम आते ही चाहत के सब्र का बांध टूट गया था। चाहत की बात सुनकर तनु समझ गई होगी कि कौन सी मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से वो यहाँ आई है। तनु ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और चाहत का हाथ पकड़कर कहा, अच्छा बताओ, तुम्हारी माँ कौन से हॉस्पिटल में है? मैं बात करती हूँ। मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन हाँ, उनका ट्रीटमेंट नहीं रुकेगा। बाकी इतने पैसों के मामले में आहान ही तुम्हारी हेल्प कर सकता है। चाहत ने तनु की बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त उसे किसी तरह के मोटिवेशन की नहीं बल्कि पैसों की जरूरत थी। चलो बताओ, तुम्हारी मॉम कौन से हॉस्पिटल में है? तनु ने फिर पूछा। मित्तल हॉस्पिटल में, चाहत ने जवाब में इतना ही कहा। तनु ने उसकी बात पर हामी भरी और उसी वक्त मित्तल हॉस्पिटल में कॉल लगाया। वो बात करने के लिए दूसरी तरफ चली गई और फिर बात करने के बाद चाहत के पास आकर बोली, तुम्हारी मॉम को लंग कैंसर है। इंडिया में इस बीमारी के लिए डॉक्टर्स की बेहतरीन टीम है, लेकिन कह नहीं सकती कि वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। वाकई इलाज पर 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसे लग जाएंगे। मैंने उनका ट्रीटमेंट शुरू तो करवा दिया है, पर तुम्हें पैसों के लिए आहान से ही बात करनी होगी। वो ज्यादा दिनों तक रुकेंगे नहीं, मैं जानती हूँ। तभी यहाँ उनसे बात करने के लिए आई थी। फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गुस्से में है या अपने गुस्से में मुझे नुकसान ही क्यों ना पहुँचा दे। मेरी मॉम से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। उनके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। फिर आहान का गुस्सा झेलना मेरे लिए मुश्किल बात नहीं है, चाहत में परेशान चेहरे के साथ कहा। अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, लेकिन बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें वॉर्न नहीं किया। तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। तुम चाहो तो सुबह भी आकर बात कर सकती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुबह तक आहान का गुस्सा शांत होगा, तनु ने बताया। वो अच्छे से जानती थी कि आहान को अपनी कंडीशन ठीक करने में 24 घंटे से भी ज्यादा टाइम लगता था। वो इस सिचुएशन में उसे इंजेक्शन या दवाई भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि आहान इतने गुस्से में उसे अपने पास कभी नहीं आने देगा। क्या उन्हें इतना तेज गुस्सा आता है कि उन्होंने पूरा घर बिखेर दिया? चाहत ने हैरानी से पूछा। इससे भी तेज, घर तोड़ना नॉर्मल बात है। मुझे डर लग रहा है कहीं वो खुद की जान ना ले ले, अगर उसका गुस्सा शांत नहीं किया गया तो। मुझे तुम्हें ये बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन आहान पहले भी गुस्से में खुद को नुकसान पहुंचा चुका है, तनु ने परेशान चेहरे के साथ कहा और फिर उसे आहान के कमरे के पास लेकर गई। तनु ने हल्का सा दरवाजा खोला। उन्होंने देखा आहान के हाथ में एक कांच का टुकड़ा था जिसे उसने मुट्ठी में बंद कर रखा था। उसके हाथ से खून निकल रहा था। ये देखकर चाहत और तनु दोनों ही घबरा गईं। वो ये क्या कर रहे हैं? उनकी जान सकती है, हमें उन्हें रोकना होगा, चाहत घबरा कर बोली और कमरे के अंदर जाने लगी। तभी तनु ने उसे रोकते हुए कहा, एक बार फिर सोच लो चाहत, तुम अंदर जा तो रही हो लेकिन आहान तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। वो जो भी करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबल तुम खुद होने वाली हो। मैं नहीं जानती वो मेरे साथ क्या करेंगे, पर फिर भी मुझे उनसे बात करनी है, उन्हें भी रोकना है, और अगर मैंने उनसे बात नहीं की तो। बोलते हुए चाहत कुछ पल के लिए रुक गई और आगे कहा, तो समझ लीजिए मेरी मजबूरी है, प्लीज हमें कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दीजिए। बोलते हुए चाहत ने अपना हाथ तनु के हाथ से अलग किया और कमरे के अंदर चली गई। आहान को चाहत के भरोसे छोड़कर तनु वापस लिविंग रूम में आ गई। चाहत धीमे कदमों से चलकर आहान के कमरे में गई। आहान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने होश में नहीं है और एकटक कांच के टुकड़े को देखे जा रहा था। आहान ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं विजय ओबेरॉय, बस ऐसा समझ लो कि मुझे तुम्हारे एक गलती करने का इंतजार था, एक बड़ी गलती जिसके बाद मैं तुम्हें जान से मार सकूं, और तुमने वो बड़ी गलती कर दी है। चाहत आहान के पास बैठी और उसके हाथ से कांच का टुकड़ा लेते हुए कहा, आहान मेरी तरफ देखिए। चाहत की आवाज सुनकर आहान का ध्यान टूटा। उसने नजर उठाकर चाहत की आंखों में देखा। उसे उस पर भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि चाहत ने उसके पास आने से मना कर दिया। आहान ने अपना हाथ चाहत के हाथ से अलग किया और कहा, चली जाओ डॉल, अब यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, मैंने तुम्हें जो टाइम दिया था वो खत्म हो गया है। आहान ने गुस्से में चाहत को दूर धकेल दिया था। उसने जिस फोर्स से चाहत को दूर किया था उससे चाहत समझ गई थी कि तनु बार बार उसे अंदर जाने से पहले अवेयर क्यों कर रही थी। आई एम सो सॉरी, मुझे आने देर हो गई, चाहत ने जवाब दिया। फिर वो आहान के पास आई और उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, आगे से आप जब भी बुलाओगे तब आप जाऊंगी, प्लीज गुस्सा मत कीजिए, आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, दूसरों के चक्कर में गुस्सा करके आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। चाहत आहान से काफी प्यार से बात कर रही थी, हालांकि वो आहान के इस गुस्से का कारण नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी उसे इतना पता था कि अगर वो आहान से प्यार से बात करे तो शायद आहान का गुस्सा कम हो जाए। अच्छा, तो तुम्हें तनु ने सब बता दिया, चली जाओ डॉल, मेरा गुस्सा तुम्हारी इन बातों से कम नहीं होगा, आहान ने कहा और चाहत का हाथ पकड़कर उसे बाहर भेजने लगा।
चाहत ने अपने दूसरे हाथ से आहान का हाथ पकड़ा और कहा, ठीक है तो फिर आपको अपना गुस्सा कम करने का जो तरीका समझ आए आप कर सकते हो, आई प्रॉमिस मैं आपको रोकूंगी वहीं, चाहे तो आप मेरी जान ले लेना, फिर भी उफ तक नहीं करूंगी। चाहत ने अपनी नादानी में कह तो दिया था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके ये शब्द उस पर कितने भारी पड़ने वाले हैं। क्या सच में डॉल, मैं कुछ भी कर सकता हूँ? एक बार फिर सोच लो, तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ सकता है। अगर तुमने बीच में मुझे रोका तो मेरा गुस्सा और बढ़ सकता है, फिर शायद मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। चाहत के साथ कुछ भी करने से पहले आहान ने एक बार कन्फर्म किया। चाहत ने बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिला दिया। चाहत के हामी भरते ही आहान ने उसे पकड़कर अपने करीब खींचा। चाहत के दिल की धड़कनें इसी के साथ तेज हो गईं। आहान ने अपने होंठ चाहत के होठों पर रख दिए। वो उसे काफी रफली किस कर रहा था। इससे चाहत को दिक्कत भी हो सकती थी, पर उसे अपनी माँ का बीमार चेहरा याद आ गया। इसी के साथ चाहत की आंखों से आंसू का कतरा बह गया और वो भी आहान का साथ देने लगी। किस करते हुए आहान ने चाहत को बेड पर गिराया। चाहत इस वक्त काफी डर भी लग रहा था, लेकिन साथ ही वो आहान को रोक नहीं सकती थी। उसने ही आहान को अपने साथ कुछ भी करने की छूट दी थी। आहान खुद नहीं जानता था कि वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। आहान चाहत के होठों को किस करते हुए नीचे आया। वो चाहत की नेक को किस करते हुए बाइट कर रहा था। चाहत को किस करते हुए आहान उससे अलग हुआ और अपना ब्लेजर निकालकर फेंक दिया। अब वो वापस चाहत के ऊपर आया और उसका टी शर्ट फाड़कर फेंक दिया। चाहत को इस तरह आहान के सामने बहुत शर्म महसूस हो रही थी। वो आहान को कुछ कहती उससे पहले आहान ने चाहत के होठों को कैप्चर कर लिया। कुछ ही देर में चाहत और आहान के बाकी कपड़े भी कमरे में बिखरे थे और आहान अपना गुस्सा चाहत की बॉडी पर निकाल रहा था। आहान काफी रफली उसकी बॉडी पर किस कर रहा था और किस करते हुए वो उसकी बॉडी में एंटर हुआ। चाहत को ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके शरीर से जान निकाल दी हो। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके होठ आहान के होठों की गिरफ्त में थे। जैसे जैसे आहान का गुस्सा शांत हो रहा था, आहान चाहत के साथ जेंटल हो रहा था। सुबह के लगभग 6 बजे के करीब आहान ने चाहत को छोड़ा। चाहत की हालत ठीक नहीं थी। आहान ने अपना गुस्सा उतार दिया था, लेकिन चाहत मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से दर्द बर्दाश्त कर रही थी। अपनी माँ की जान बचाने के लिए आज उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। उसे मन ही मन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पैसों के लिए उसने अपने शरीर और आत्मा को बेच दिया हो।